एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे फ्रांसीसी उपन्यास की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ अपने समय के समाज को आईना दिखाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शोषण, संघर्ष और उम्मीद की एक मतलब एक यादगार कहानी बन गया।
हाँ, बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं एमिल ज़ोला के जबरदस्त उपन्यास जर्मिनाल की।
जर्मिनाल वाकई एक मील का पत्थर है ये उपन्यास।
हाँ, और ज़ोला खुद एमिल ज़ोला 19वीं सदी के फ्रांस के वो लेखक थे जिन्होंने प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म की कह सकते हैं मशाल जलाई।
सही कहा। उनका मानना था कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक वैज्ञानिक की तरह समाज को, इंसान के बर्ताव को समझना और दिखाना चाहते थे।
बिल्कुल, और ख़ास तौर पर ये कि हमारी पैदाइश मतलब वंशानुक्रम और हमारा माहौल,
हाँ माहौल,
हमें कैसे बनाते हैं, कैसे गढ़ते हैं। उनकी वो मशहूर 20 उपन्यासों की श्रृंखला है रूगो मकार।
उफ, क्या कमाल की सीरीज है वो। पूरे फ्रांसीसी समाज का, जैसे आपने कहा, नस नस का चित्रण।
हाँ, और जर्मिनाल इसी कड़ी का 13वां उपन्यास है, 1885 में छपा था।
और वो दौर भी बड़ा अहम था, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति।
हाँ बिल्कुल, भयंकर उथल पुथल मची हुई थी समाज में और ज़ोला ने कोई हवावाई बातें नहीं की।
नहीं, उन्होंने तो बाकायदा रिसर्च किया। उत्तरी फ्रांस गए, कोयला खदानों में मजदूरों के बीच महीनों रहे।
हाँ, उन अंधेरी खतरनाक खदानों में उतरे भी, उनकी जिंदगी को बिल्कुल करीब से देखा।
इसीलिए तो ये उपन्यास इतना इतना असली लगता है, इतना असरदार है।
सही, यहाँ तक कि इसका नाम जर्मिनाल ये भी बड़ा सिंबॉलिक है ना?
बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांतिकारी कैलेंडर का एक महीना, मार्च अप्रैल वाला समय।
हाँ, जब बीज फूटते हैं, नई कौंपलें निकलती हैं, अंकुरण और बदलाव की उम्मीद का प्रतीक। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी पे होगी। इस उपन्यास की कहानी क्या है, इसके किरदार कैसे जीते हैं, जूझते हैं, बदलते हैं।
हाँ, और ज़ोला हमें वर्ग संघर्ष और उस पूरी व्यवस्था के बारे में
और उम्मीद की उस बारीक सी डोर के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करते हैं।
और कहानी की शुरुआत ही पाठक को सीधे उस बिरहम माहौल में फेंक देती है।
हाँ, वो पहला सीन
सोचिए, मार्च की एक सर्द काली रात, एतियन लोतिये नाम का एक नौजवान बेरोजगार मैकेनिक है, काम की तलाश में पैदल ही मौजू नाम के उस वीरान कोयले की धूल से अटे खनन इलाके में पहुंचता है।
ज़ोला का डिस्क्रिप्शन कमाल का है, ऐसा माहौल रचते हैं कि वो ठंड, वो वीरानगी सब महसूस होती है।
बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान मतलब कुदरत की ताकत और इंसान की ही बनाई शोषण की चक्की के बीच पिस रहा है।
और उस इलाके का सेंट्रल पॉइंट वो खदान लेवोरू।
हाँ, लेवोरू, वो धड़कन भी है और दानव भी। ज़ोला उसे किसी जीते जागते राक्षस की तरह दिखाते हैं
जिसका पेट कभी नहीं भरता।
हाँ, जो मजदूरों की जिंदगी निगल जाता है, अंग्रेजी में मतलब भी है, द वोरेशियस भुक्खड़।
उफ, ये सिर्फ एक खदान नहीं, जैसे जैसे एक आधुनिक नरक का दरवाजा जहां रोज सुबह मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर
धरती के सीने में उतरते हैं। और वही हमारी मुलाकात होती है मायहू परिवार से।
मायहू परिवार, कहानी का दिल कह सकते हैं उन्हें।
हाँ, तूसो मायो एक तजुर्बेकार मेहनती खानिक, उनका पूरा परिवार इसी खदान के सहारे है और इसी के श्राप तले भी।
उनके जरिए ज़ोला हमें उस जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं जहां खतरा तो हर पल है।
बिल्कुल, मजदूरी इतनी कम कि पेट भरना मुश्किल, कर्ज का बोझ, मायूसी।
जो जमीन चीरकर कोयला निकालते हैं उनके नसीब में अंधेरा ही है। और इसी अंधेरे में एक कह सकते हैं एक चिंगारी बनकर आता है एतियन लोतिये।
हाँ, एतियन, वो बाकियों से थोड़ा अलग है,
पढ़ा लिखा है थोड़ा, उसके जहन में समाजवाद के नए नए विचार हैं।
लेकिन जैसा आपने कहा, वो ज़ोला के रुगो माकार यूनिवर्स का हिस्सा है।
हाँ, तो उस पर अपने खानदान का असर भी है।
हाँ, वो माकार दोष,
गुस्सा और
कभी कभी भैग जाने की प्रवृत्ति,
और ये कोई मामूली गुस्सा नहीं,
जैसे उसके खून में हो।
बिल्कुल, जो उसे एक आदर्शवादी नेता होने के साथ साथ एक खतरनाक इंसान भी बनाता है।
ये ज़ोला का वही प्रकृतिवाद है, इंसान सिर्फ अपने इरादों से नहीं बनता, वो अपनी विरासत और माहौल की भी उपज है।
और खदान में उसका पहला दिन
वो तो उसे हिलाकर रख देता है। तुसा माहेउ और उनकी बेटी कैथरीन के साथ काम पर लगता है और जोला हमें उसके साथ उस घुटन भरी पसीने और कोयले की गंध वाली गहराई में ले जाते हैं।
अंधेरा, मीथेन गैस का डर, फायर डैम्प, चट्टानों के गिरने का खौफ
और वो कमर तोड़ मेहनत, वहीं उसकी टक्कर होती है शैवाल से।
शैवाल एक और अहम किरदार, दबंग किस्म का।
हाँ, जो कैथरीन पर अपना हक समझता है। ये टकराव सिर्फ दो मर्दों का नहीं, दो सोच का भी है।
सही कहा।
और धीरे धीरे एथेन सिर्फ एक मजदूर नहीं रहता।
नहीं, वो समाजवादी विचारों वाले पर्चे पढ़ता है, साथियों से बहस करता है।
वो एक छोटा सा प्रोविडेंट फंड शुरू करता है, कहने को तो बीमारों की मदद के लिए,
पर असल में वो आने वाली हड़ताल की तैयारी है, एक तरह का वॉर चेस्ट।
हाँ, लोग उसे सुनने लगते हैं, उसमें अपना नेता देखने लगते हैं। जुला यहाँ दिखाते हैं कि कैसे जानकारी, चेतना, मतलब अपने हालात को समझना, लोगों को सवाल उठाने और एकजुट होने की हिम्मत दे सकती है।
और फिर वो मौका आता है चिंगारी भड़कने का।
हाँ, कंपनी मजदूरी और घटाने का ऐलान कर देती है, वो भी हिसाब किताब में हेरफेर करके।
ये तो मतलब जले पर नमक छिड़कने जैसा था।
बिल्कुल, सब्र का बांध टूट जाता है। जंगल में रात को चुपके से खनिकों की बैठक होती है।
माहौल गर्म होगा वहाँ काफी,
बहुत ज्यादा। एक तरफ रासनेर है, जो पहले खनिक था अब सराय चलाता है। वो समझाता है, संयम की बात करता है,
क्योंकि वो जानता है कि हड़ताल का मतलब है भूख।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ है एटियन, जिसके लफ्जों में आग है। वो कहता है, अब और नहीं झुकना, हड़ताल ही रास्ता है।
और उसका जोश, उसके तर्क लोगों पर असर करते हैं।
बिल्कुल, जोरदार समर्थन मिलता है और हड़ताल का फैसला हो जाता है। लगता है जैसे सालों का दबा हुआ गुस्सा अब बाहर आने को तैयार है।
हड़ताल शुरू तो होती है बड़े जोश और एकता के साथ, एक उम्मीद जगती है।
हाँ, लगता है इस बार कुछ होगा, लेकिन जोला कोई मतलब रोमांटिक कहानी नहीं लिख रहे हैं।
सही, वो दिखाते हैं कि एकता बनाए रखना कितना मुश्किल है, खासकर जब पेट में आग जल रही हो।
दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, और भूख एक राक्षस की तरह घरों में डेरा डालने लगती है।
वो छोटा से प्रोविडेंट फंड भी
ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। यहाँ जोला का प्रकृतिवाद फिर सामने आता है। इंसान की बुनियादी जरूरतें जैसे भूख कैसे उसके ऊंचे इरादों पर भारी पड़ सकते हैं।
बिल्कुल, और इस कहानी को सिर्फ एटीएन या हड़ताल की कहानी समझना भी गलत होगा।
मैंने बिल्कुल नहीं, इसके दूसरे किरदार भी उतने ही अहम हैं। वो इस संघर्ष को अलग अलग रंग देते हैं।
माहियो परिवार की ही बात करें, उनकी कहानी तो मतलब दिल चीर देती है।
यकीनन, तुसा माहियो को देखिए, एक सीधा साधा इज्जतदार आदमी, बस अपने परिवार का पेट पालना चाहता था।
हिचकिते हुए हड़ताल में शामिल होता है, पर जब खड़ा होता है तो पूरी हिम्मत से।
हाँ, और उसका अंत बहुत दुखद है, पर वो अन्याय के सामने न झुकने का प्रतीक बन जाता है। और उसकी पत्नी ला माहेवुद,
वो तो कमाल का कैरेक्टर है।
वो तो सुपन्यास की जान है। शुरुआत में वो घर चलाने की फिक्र में डूबी एक आम औरत है, लेकिन जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती हैं, बच्चों की मौत, भुखमरी,
वो बदल जाती है।
वो एक दहाड़ती हुई शेरनी बन जाती है। वो सिर्फ रोटी नहीं मांगती, वो इंसाफ मांगती है। उसकी आवाज में जैसे सदियों का दर्द और गुस्सा भर जाता है।
और फिर कैथरीन,
कैथरीन, उसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। वो बेचारी दो पार्टों में पिस रही है, और दूसरी तरफ शवाल जैसे मर्दों का जुल्म, और एथियन के लिए उसकी वो दबी हुई चाहत। वो जोला की दुनिया में औरत होने की त्रासदी को जीती है, चुपचाप सहते हुए, बिना किसी उम्मीद के। और दूसरी तरफ वो किरदार हैं जो इस आग को या तो भड़काते हैं या उसकी दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं, शैवाल। एथियन का एकदम उल्टा, स्वार्थी, वहशी, सिर्फ अपना फायदा देखने वाला।
कैथरीन के साथ उसका रिश्ता भी जबरदस्ती का है, वो एकता तोड़ने वाला एलिमेंट है।
हाँ, और फिर है स्वारीन, वो रूसी अराजकतावादी,
ठंडा दिमागी किस्म का। उसके लिए ये हड़ताल, ये मांगे, सब बेकार की भावुकता है।
वो मानता है कि ये पूरी सड़ी हुई व्यवस्था बम से उड़ा देने लायक है, तभी कुछ नया बन सकता है। उसका रास्ता एकदम अलग है, तबाही का।
उसकी सोच हमें सवाल करने पे मजबूर करती है कि क्या बदलाव लाने के लिए सब कुछ मिटा देना जरूरी है।
बिल्कुल, और इन सब के ऊपर है वो वर्ग जो इस शोषण के लिए जिम्मेदार है, पूंजीपति।
हाँ, जैसे मोसियो हेनेब्यू, खदान का मैनेजर। जोला उसे सिर्फ एक विलेन की तरह नहीं दिखाते।
नहीं,
वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था और नतीजों के बीच फंसा है। उसकी अपनी जिंदगी भी दुखों से भरी है, लेकिन वो उस सिस्टम का हिस्सा है जो मजदूरों को पीस रहा है।
और वो ग्रिगोय परिवार, अमीर शेयर होल्डर, पेरिस में आराम से बैठे हैं
और खदान से आने वाले मुनाफे पर ऐश कर रहे हैं। उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं कि उनका ये ऐशो आराम किन की जिंदगी की कीमत पर टिका है। उनके वो दान पुण्य की बातें भी कितनी खोखली लगती हैं।
और जब सब्र और उम्मीद दोनों जवाब दे जाते हैं
तो वही होता है जिसका डर था। भूख और हताशा अब अंधे गुस्से में बदल जाते हैं।
हजारों की तादाद में भूखे, नंगे, कमजोर लेकिन गुस्से से भरे मर्द, औरतें, बच्चे
एटीएन और लामाहयुद के पीछे चल पड़ते हैं। वो खदानों पर हमला करते हैं, मशीनें तोड़ते हैं, जो मजदूर डर के मारे काम पर लौटे थे उन्हें मारते पीटते हैं।
और वो सैलाब तब चरम पर पहुंचता है जब भीड़ मेगरा नाम के दुकानदार को मार डालती है। वो दुकानदार जो उधार के बदले औरतों का जिस्म नोचता था और उसके बाद उसके शव के साथ जो वहशियाना सुलूक किया जाता है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है।
ये हिंसा का नंगा नाच देखकर एटीएन खुद दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस जुनून को हवा दी थी
वो अब एक बेलगाम अंधी ताकत बन चुका है जो बनाने नहीं सिर्फ मिटाने निकली है।
ये जोला का बहुत अहम पॉइंट है। क्रांति सिर्फ नारों और झंडों का नाम नहीं, वो अपने साथ अंधेरा और बर्बरता भी ला सकती है।
कैसे सालों का जुल्म इंसान को अंदर से तोड़कर वहशी बना सकता है।
हाँ, एटीएन के दिमाग में वो क्रांति का लाल नजारा घूमता है, खून से सना हुआ भविष्य।
इस हिंसा का जवाब और भी भयानक होता है। कंपनी फौज बुला लेती है।
लेवुरु खदान के बाहर वो टकराव।
हजारों निहत्ते भूखे खनिक और उनके परिवार फौजियों के सामने खड़े हैं। माहौल में तनाव है। एक पत्थर चलता है और घबराए हुए सैनिक गोलियां चला देते हैं।
और फिर
मिनटों में जमीन लाशों से पट जाती है। तुसा माहू सीने पर गोली खाकर वहीं ढेर हो जाता है।
उफ!
ये नरसंहार हड़ताल की रीढ़ तोड़ देता है। हार तय हो जाती है।
और इसी हार और नाउम्मीदी के माहौल में
सुवारीन
अपना काम कर जाता है। वो चुपके से लेवोरू खदान में घुसकर उसकी बुनियाद को कमजोर कर देता है। साबोटाज।
और जब मजदूर हार मानकर पेट की आग बुझाने के लिए वापस उसी अंधेरी खदान में उतरते हैं,
उनमें एटीएन, कैथरीन और शैवाल भी हैं,
तो स्तुवारीन की लगाई आग पानी बनकर फूट पड़ती है। खदान में सैलाब आ जाता है,
जैसे धरती खुद अपना बदला ले रही हो।
बिल्कुल, दीवारों से पानी फूटता है, सैकड़ों मजदूर डूब जाते हैं, कुचल जाते हैं। एटीएन, कैथरीन और शैवाल किसी तरह एक हवा की जेब में फंस जाते हैं,
उस घुप अंधेरे में मौत के सामने।
एटीएन और शैवाल का आखिरी टकराव होता है। एटीएन उसे मार डालता है और फिर आखिरी पलों में
एटीएन और कैथरीन
पहली और आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करते हैं, और कैथरीन भूख, थकन और शायद टूटे हुए दिल से एटीएन की बाहों में दम तोड़ देती है।
ये वाकई उपन्यास का सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा है,
दिल दहला देने वाला।
पाठक के तौर पर आप बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं।
हाँ, वो खदान जिसे जोला शुरू से एक राक्षस की तरह दिखा रहे थे
वो आखिरकार सबको निगल जाती है, लेकिन खुद भी तबाह हो जाती है। जोला लिखते हैं, खदान किसी भूखे जानवर की तरह थी जिसका विशाल गला पूरी आबादी को निगल सकता था।
ये सिर्फ पत्थर और कोयले का ढेर नहीं, ये उस पूरी बेरहम व्यवस्था का प्रतीक है जो इंसानों को खा जाती है।
लेकिन एटीएन बच जाता है।
हाँ, 9 दिन बाद चमत्कारिक रूप से उसे जिंदा निकाल लिया जाता है। वो बुरी तरह टूट चुका है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी।
लेकिन धीरे धीरे वो संभलता है और फिर वो मौसूद छोड़ने का फैसला करता है, पेरिस जाने का,
ताकि वहां जाकर मजदूरों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ा सके।
और उपन्यास का अंत वो तो कमाल का है।
हाँ, वाकई एथेन बसंत की एक सुबह मानसून से निकल रहा है, सूरज उग रहा है, खेतों में नई फसल की उम्मीद है,
और तभी उसे जमीन के नीचे से, खदानों से
अपने साथियों के काम करने की धीमी लगातार आवाजें सुनाई देती हैं, वो ठोकरें जो जमीन के सीने पर पड़ रही हैं।
और तब एटीएन कल्पना करता है कि ये सिर्फ आवाजें नहीं,
ये धरती के अंदर बोए गए बीज हैं, ये इंसान हैं जो अंधेरे में धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं, एक नई फाज की तरह
जो अगली सदी में जरूर उगेगी और इंसाफ लेकर आएगी।
क्या खूबसूरत और ताकतवर अंध है।
बिल्कुल, हार के बावजूद, इतनी तबाही के बावजूद एक उम्मीद की किरण।
यहीं आकर उपन्यास का शीर्षक जर्मिनाल
अपने पूरे मायने पाता है।
अंकुरण का महीना।
संघर्ष भले ही अभी नाकाम रहा हो, पर जोला का संदेश साफ है, बदलाव के बीज बो दिए गए हैं।
हाँ, जैसा कि वो लिखते हैं, इंसान उग रहे थे, एक काली बदला लेने वाली फौज धीरे धीरे धरती की दरारों में उग रही थी, आने वाली सदियों की फसल के लिए तैयार हो रही थी।
ये हार नहीं, ये आने वाले कल की तैयारी है। तो अगर हम जमीनाल के सार को समेटे तो जाहिर है भी वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण इसका केंद्र है।
हाँ, जुला दिखाते हैं कि ये सिस्टम कैसे इंसानों को सिर्फ मुनाफा कमाने का औजार समझता है।
फिर औद्योगिक समाज का वो अमानवीय चेहरा, इंसान को मशीन बना देना।
क्रांति कितनी पेचीदा चीज है, कैसे अच्छे इरादे भी तबाही ला सकते हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है।
और कैथरीन जैसी औरतों के जरिए लिंग और सत्ता का सवाल भी उठता है। जोला का वो प्रकृतिवाद, वंशानुक्रम और माहौल का असर सब किरदारों में झलकता है।
लेकिन वो इससे एक बंद गली नहीं बनाते, उम्मीद की खिड़की खुली रखते हैं।
और जोला के लिखने की शैली वो कमाल की है। वो दावा तो करते हैं वैज्ञानिक तटस्थता का,
लेकिन उनका लिखन जज्बात से भरा है। वो इतनी बारीकी से माहौल रचते हैं, खदान की घुटन, भूख की ऐंठन, भीड़ का शोर, गोलियों की आवाज,
सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। और वो प्रतीक, खदान का राक्षस होना, अंधेरा और रोशनी का खेल,
और आखिर में वो उगते हुए बीज, ये सब कहानी को एक अलग ही गहराई देते हैं।
हाँ, और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी, मतलब 150 सदी बाद भी, हमें अपनी सी लगती है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि तरक्की की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव में अक्सर आम इंसान का पसीना और आंसू होते हैं।
सही कहा, जर्मेनाल सिर्फ कोयला खनिकों की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता है, जो टूट कर भी फिर खड़ा होने का हौसला रखता है,
और जो बेहतर दुनिया के सपने को मरने नहीं देता।
हाँ, ये मानवीय गरिमा के लिए कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष का एक शक्तिशाली दस्तावेज है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।